सो ये पेज नंबर 39 है, 39वां। जिसके पास भगवत गीता नहीं है वो प्लीज ले लीजिए भगवत गीता। और पहले अध्याय के 39वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे, 21वें श्लोक पे हम चर्चा करेंगे। सो आप लोग मेरे पीछे दोहराइए, अर्जुन वाचा सेनयोर मध्ये रथम स्थापय मे च्युता यावदेतान ऋक्षेहम् योधु कामानवस्थितान् कैर्मया सह योधव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। आप टेंशन मत लो के बराबर से उच्चारण नहीं कर पाए, टूटा फूटा जो भी जैसा भी है आप उच्चारण करेंगे सो कृष्णा एक्सेप्ट करेंगे उसको, है ना, क्योंकि कृष्ण भावग्राही है। सो कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत विशारद है, विद्वान है कोई व्यक्ति, लेकिन अगर भक्त नहीं है तो कृष्णा लाइक नहीं करते उसको। लेकिन अगर कोई बहुत अच्छे से संस्कृत का विद्वान नहीं है लेकिन फिर भी कृष्ण भक्त है और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ त्रुटि रहेगी, तो भगवान त्रुटि को नहीं देखते, उसके प्रयास को देखते हैं, ठीक है। सो अभी हम जब अगला श्लोक दोहराएंगे तो आप बहुत अच्छे से साथ में आप दोहराने की कोशिश करो, ठीक से नहीं बोलोगे तो भी चलेगा, हाँ उतना ही फायदा मिलेगा। सो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तो यहाँ पर अर्जुन जो है वो पहली बार कृष्ण को आदेश दे रहे हैं। और कृष्ण को क्यों आदेश दे रहे हैं? क्योंकि कृष्ण उनका आदेश स्वीकार करने के लिए बहुत उत्सुक है ना? सो अर्जुन यहाँ पर कृष्ण को बोल रहा है अच्युत, बोल रहा है ना, रथम स्थापय मे अच्युता। सो अच्युत का मतलब होता है जिनका कभी पतन नहीं होता, है ना, इनफॉलिबल। सो अर्जुन कृष्ण को अच्युत क्यों बोल रहा है? अर्जुन कृष्ण को अच्युत इसलिए बोल रहा है क्योंकि अर्जुन को पूरा भरोसा है कि कृष्ण उनकी बात पूरी करेंगे, है ना। भगवान कृष्ण के अनेक गुण हैं, लेकिन उनका जो सबसे मधुर, सबसे आकर्षक गुण है भगवान का, वो क्या है? भक्त वत्सलता, है ना। कृष्ण भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सल है मतलब भगवान अपने भक्तों की छोटी से छोटी जो सेवा है उसको भी भगवान सहर्ष स्वीकार करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि हो कोई 1 करोड़ रुपया खर्चेगा तो फायदा होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई छोटी सी भी सेवा करेगा भगवान उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। हाँ, भगवान ये नहीं देखते आपने कितना दिया, भगवान ये देखते हैं आपने कितना रोक के रखा अपने पास। सो अगर कुछ नहीं है फिर भी आपने सामने से सेवा किया तो कृष्णा एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन अगर आप 100 रुपये खर्च सकते थे आपने 70 रुपये खर्चे तो कृष्णा को इतना अच्छा नहीं लगेगा, एक्सेप्ट भी करेंगे उसको भी लेकिन इतना अच्छा नहीं लगेगा, है ना। सो और चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया, जब भगवान कृष्ण कलयुग में आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, तो उन्होंने दिखाया जब एक चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे कोलावेचा श्रीधर, उसका नाम था श्रीधर, लेकिन उसका नाम पड़ गया, लोग उसको बोलते थे कोला बेचा श्रीधर। सो बंगाल में केले को कोला बोलते हैं, कला कोला कोला। ओके, सो वो जो श्रीधर जो भक्त था वो केले के पत्तों से बनी हुई वस्तुएं बेचता था, जैसे उसके दोने बनाए और केले बेचे। सो उससे जो पैसा मिलता था वो बहुत ही कम पैसे मिलते थे उसको, वो पैसा भी कोला बेचा श्रीधर जो थोड़ा बहुत मिलता था, केले के पत्ते सिक्के दोने बना के कितना बेच देगा, और उसका कोई 100 एकड़ की जमीन थोड़े ना थी, 2-4 केले के पेड़ थे, उसी के जो पत्ते बनाकर वो बाजार में बेचते थे, थोड़ा बहुत पैसा आता था, उसमें से भी आधा पैसा गंगा की सेवा में लगा देते थे, है ना। और चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने से पहले रोज उसके घर जाते थे और गंगा स्नान करते हुए उसके घर जाते थे और उसका जो है सामान छीन लेते थे, उसका दोने छीन लेते थे, केला छीन लेते थे, तो बोलते थे कितने का है ये, तो कोला बेचा श्रीधर बोलता था ये 5 आने का है, तो अरे बहुत ज्यादा है, 1 आना दूंगा, अरे नहीं नहीं 1 आना बहुत कम है, यही दूंगा देना है तो लोग, नहीं नहीं बहुत कम है, अब 1 आना भी नहीं दूंगा, उसका सामान लेके चले जाते थे, मैं गुजारा कैसे करूंगा मुझे नहीं पता, है ना। तो जबरदस्ती जो है भगवान जो है भक्त की प्रेम से इतना भावित हो जाते हैं, भगवान भावावेश में आ जाते हैं कि तुझ से तुझ चीज भी उनको बहुत महान लगती है, क्योंकि उसके अंदर भक्त का जो प्रेम है वो आवेशित होता है। और चैतन्य महाप्रभु कहते थे कोला बेचा श्रीधर को, तुम्हारे पास बहुत धन है, किसी दिन आऊंगा और सारा धन तुम्हारा उजागर कर दूंगा। कोला बेचा श्रीधर कहता है मेरे झोपड़ी की छत टूटी हुई है, बारिश में पानी नीचे गिरता है, मेरे कपड़े फटे हुए हैं, जहां से कपड़ा फटता है मैं गांठ लगा के इस्तेमाल करना शुरू कर देता हूं, लोटा भी एक ही था, पानी पीने का शौच जाने का एक ही लोटा था, बोले है ही नहीं धन, कहां से आ गया धन। चैतन्य महाप्रभु ने बोला एक दिन उजागर करूंगा। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन किया तो सब लोगों को लेकर चैतन्य महाप्रभु पूरे नवद्वीप में घूम रहे थे। नवद्वीप जो है वो पश्चिम बंगाल में जगह है, नवद्वीप का मतलब है 9 द्वीप है, वहां पर इकट्ठे 9 द्वीप हैं जहां पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, उन्होंने बहुत लीलाएं की वहां पर। कभी मौका मिलेगा आप लोगों का और मेरा दोनों का सौभाग्य जागृत होगा तो चलेंगे कभी। अभी तो हम वहां जा रहे हैं जहां पर चैतन्य महाप्रभु 18 वर्ष तक रहे, जगन्नाथपुरी। आप अभी चल पड़ना, अभी क्या आप लास्ट मिनट में आ जाओगे, आपको हम ट्रेन में बिठा देंगे। सो जब चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में उन्होंने उद्घाटन किया संकीर्तन का, तो सारे करोड़ों भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के साथ, सारे देवी देवता मनुष्यों का रूप धारण करके सब लोग उस संकीर्तन यज्ञ में भाग लेने आए थे और सब जोर जोर से नाच रहे थे, यमराज शिव जी ब्रह्मा जी सब जोर जोर से नाच रहे थे और जोर जोर से बोल रहे थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम। तो भ्रमण करते 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 कोला बेचा श्रीधर की झोपड़ी में पहुंच गए और कोला बेचा श्रीधर एकदम से सामने गया और दंडवत प्रणाम किया। उसको पता चल गया था कि स्वयं भगवान है। सो चैतन्य महाप्रभु उसके घर में गए और बोले दिखाओ कहां पर है खजाना तुम्हारे पास, मैं आज तुम्हारा खजाना लेने आया हूं। नहीं है कुछ भी, आप रोज तो आके देखते हो। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसका लोटा, जो बिल्कुल बेपैंदी का लोटा, टूटा फूटा उठाया, उसमें पानी भरा और चैतन्य महाप्रभु ने पी लिया। बोल रहे हैं कि ये है तुम्हारा धन। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण वो ऐश्वर्य से प्रभावित नहीं होते, वो भक्ति से प्रभावित होते हैं, है ना। और भगवान कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सथैव भजामि अहम्। मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा। चैतन्य भगवान कृष्ण भगवत गीता में आगे ये श्लोक आएगा, हाँ तब हम इस पे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप मुझसे जैसा बर्ताव करोगे ताम सथैव भजामि अहम्, मैं आपसे वैसा ही व्यवहार करूंगा। सो अर्जुन और पांडव भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तैयार थे, तत्पर थे। और क्योंकि पांडव भगवान कृष्ण के लिए कुछ भी करने को तत्पर थे, इसीलिए भगवान कृष्ण भी पांडवों के लिए कुछ भी करने को तत्पर थे। जब युद्ध होता था तो जो अर्जुन का जो रथ है उसके जो घोड़े जुते हुए थे उनको तीर लगते थे, उनको नहीं तीर चढ़ रहे चारों तरफ से, ऐसे थोड़े ना कि सारे तीर एक अर्जुन को ही ध्यान में रख के मारेंगे, वो तो धड़ाधड़ चारों तरफ तीर चल रहे हैं, कोई रथ को भी लगेंगे, कोई घोड़ों को भी लगेंगे, कोई कृष्ण को भी लगेंगे, नहीं और अर्जुन को भी लगेंगे। तो जब युद्ध के दौरान बीच में कुछ ब्रेक आता था तो भगवान कृष्ण स्वयं अपने हाथ से घोड़ों के शरीर से वो तीर निकालते थे, मरहम लगाते थे उसको, जो घोड़ों की जो सेवा करता है उसको कोई बहुत महान समझा जाता है क्या? उसको महान नहीं समझा जाता, उसको नीच समझा जाता है उसको, है ना। द्रौपदी ने कर्ण को रिजेक्ट कर दिया था, नहीं क्यों रिजेक्ट किया था कर्ण को? क्योंकि बोल रहे थे कि ये सूत पुत्र है, रथ चलाने वाले का बेटा है, हाँ रथ चलाने वाले का बेटा है, इसलिए मेरे योग्य नहीं है। बोला था नहीं बोला था द्रौपदी ने? नहीं। और भगवान कृष्ण ने खुद वो नीची जो स्थिति है उसको स्वीकार किया और घोड़े की अपने हाथ से घोड़ों की सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पांडवों ने अपनी भक्ति के बल पर भगवान को अपने अधीन कर लिया था, इसीलिए अर्जुन ने बहुत ही विश्वास के साथ बोला, हाँ कि हे अच्युत मेरा रथ उभयोर सेने और मध्य, दोनों उभय मतलब दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित कर दो। और भगवान कृष्ण जो हैं वो भगवत गीता का संदेश देना चाहते थे, इसलिए भगवान कृष्ण ने एक ट्रिक खेली यहां पर, वो आपको आगे बताते हैं हम। तो यहां पर प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्योंकि ऐसा नहीं, यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था किंतु इससे उनकी परम स्थिति अक्षुण बनी रही। ऐसा नहीं है कि भगवान कृष्ण ने रथ चलाना शुरू कर दिया, किसी और के लिए ड्राइवर बन गए तो वो ड्राइवर ही बन गए और भगवान नहीं रहे। भगवान कुछ भी करेंगे, कैसा भी रूप धारण कर लेंगे, कैसा भी कार्य करेंगे, वो हर परिस्थिति में हमेशा भगवान बने रहेंगे, इसीलिए उनको अच्युत कहा जाता है। ठीक है। तो अब हम श्लोक नंबर 23 पे चर्चा करेंगे। योत्स्यमानान् वेक्षेऽहम् धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रियचिकीर्षवः। सो अर्जुन कह रहा है कि मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण का, सिर्फ दुर्योधन का ही दिमाग खराब था। जो दुर्योधन का साथ दे रहे थे उन सबका दिमाग खराब था, है ना। भीष्म पितामह भी, द्रोणाचार्य भी, क्योंकि उन्होंने आतताई का साथ दिया, गलत अधर्मी व्यक्ति का साथ दिया, इसलिए उनको भी उसका खमियाजा भुगतना पड़ा, है ना। संजय वाचा एवं तो ऋषिकेशो गुणाकेशेन भारत सेनयोर्भ्योर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। सो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, भरतवंशी कौन है यहाँ पर, कौन है, आप लोग, मतलब मैं चेक करता हूँ बीच में कि कभी बिल्कुल कंफ्यूजन में तो नहीं चल रहे यार, कौन किससे बात कर रहा है। संजय तो धृतराष्ट्र से बात करेगा ना, कहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं, हाँ, महल का हस्तिनापुर में, ठीक है। सो संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताः उवाच पार्थ पश्येतां संवेतान कुरुनिति। सो भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो, है ना। सो भगवान कृष्ण ने जब बोला कि सारे कुरुओं को देखो, तो अर्जुन ने किसको देखा, तो वहां पे कुरु कौन थे, वहां पर सारे ही कुरु थे, कौरव भी कुरु थे और पांडव कौन है, वो भी तो कुरु ही थे, नहीं। सो ऐसा नहीं अर्जुन ने सिर्फ सामने ही देखा, अर्जुन ने सामने भी देखा और पीछे भी देखा, दोनों तरफ को देखा, क्योंकि दोनों ही जो सेनाएं हैं, दोनों ही सेनाएं कुरु हैं, दोनों सेनाएं कुरु वंश से संबंधित हैं। वो तो धृतराष्ट्र ने पंगा डाल दिया बोल के, माम का पांडवाश्चय, है ना, लेकिन जो पांडव है वो भी तो कुरु ही है, है ना। तो अब जो ट्रिक भगवान ने की, जब अर्जुन ने बोला कि रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाओ, तो भगवान कृष्ण भी बिल्कुल ऐन उसी जगह पे रथ ले गए कि सामने भीष्म और द्रोण ही दिखाई दिए। इतने करोड़ों लोग थे, ऐसी जगह भी ले जा सकते थे जहां पर द्रोण और भीष्म ना दिखाई दे, धुंधले दिखाई दे, वहीं पर लेके गए कि देख लो भैया, इनसे युद्ध करना है तुमने, है ना। तो उनको देखते ही, जैसे ही अर्जुन ने उनको देखा, सो अर्जुन का जो मन है वो व्यथित हो गया, अर्जुन का मन, है ना। सो अब हम श्लोक 26 पढ़ेंगे हम। तत्र पश्य सिद्धान पार्थ पितृनत पितामह आचार्यान् मातुलान् भ्रातृन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। सो अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा ताऊओं पितामहों गुरुओं मामाओं भाइयों पुत्रों पौत्रों मित्रों ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। तो यहाँ पर प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जब हम बात कर रहे हैं कि चाचा ताऊ जो पितरन है जो पितरन है जो पिता के समान है ना, पिता तो थे नहीं, पांडु जो है उनका देहांत हो चुका था, लेकिन जो पांडु के समकक्ष है, हाँ समकक्ष है जैसे चाचा ताऊ है ना, उनको पितरन बोला गया है। तो उन्होंने बताया कि कौन है वो, हाँ तो श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे भूरिष्ठवा, भूरिष्ठवा जो है वो उनके पिता के समकक्ष थे। फिर भूरिष्ठवा के जो भूरिष्ठवा के पिता वो पितामह हो गए, जब भूरिष्ठवा पिता के समान है तो पिता का पिता पितामह के समान हो गया है ना। तो भूरिष्ठवा के पिता का क्या नाम था, सोमदत्ता। तो जैसे बता रहे हैं ना कि भीष्म तथा सोमदत्ता जैसे पितामह हो, तो जो सोमदत्ता है वो भूरिष्ठवा के पिता है, इसीलिए उनको पितामह कहा गया है। तो ये दोनों भूरिष्ठवा और सोमदत्ता ये दोनों दुर्योधन की ओर से युद्ध लड़ रहे थे और इन दोनों का वध सात्यकी ने किया था। फिर द्रोणाचार्य और कृपाचार्य गुरु हो गए है ना, आचार्य आचार्यान है ना। तो जो आचार्य कौन है, द्रोणाचार्य कृपाचार्य। फिर मातुलान मामा, मामा कौन है, शल्य तथा शकुनी। हालांकि शल्य को शल्य जो है, शल्य कौन है, पांडवों का मामा है, कैसे नकुल सहदेव के मामा है, किसके किसके भाई हैं, माद्री के है ना, पांडु की दो वो थी ना पत्नियां, कौन कौन, कुंती और माद्री है ना। सो जो शल्य हैं वो माद्री के भाई हैं, वो घर से चले थे पांडवों के लिए लड़ाई करने के लिए, लेकिन दुर्योधन ने पूरे रास्ते उनकी इतनी सेवा की कि शल्य जो है उसको दुर्योधन के लिए युद्ध करने के लिए बाध्य होना पड़ा उसको है ना। सो तो शल्य जो है हालांकि मामा पांडवों का था लेकिन लड़ाई उसने कौरवों की तरफ से किया उसने, ठीक है ना। सो दुर्योधन जैसे भाइयों और लक्ष्मण, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, लक्ष्मण कौन है, हाँ दुर्योधन का पुत्र है लक्ष्मण, ठीक है, जो लक्ष्मण है याद रखना दुर्योधन का पुत्र है, ये राम के भाई वाला लक्ष्मण नहीं है, ठीक है, ये दुर्योधन, दुर्योधन के पुत्र का नाम है लक्ष्मण। और अश्वत्थामा जैसे मित्रों और कृतवर्मा जैसे शुभ चिंतकों को देखा है ना। सो अगला श्लोक है 27वां, तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धुनवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विशीतन्निदमाब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। तो अब 28वां श्लोक है, सब लोग थोड़ा सा शांति, सिर्फ मेरे पीछे श्लोक दोहराए उसके बाद कुछ नहीं बोले, ठीक है। अर्जुन वाचा दृष्टवेम स्वजन कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति। सो अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है ना। सो ये व्यथा के लक्षण है। अर्जुन इसलिए नहीं घबरा रहा था कि मैं हार जाऊंगा, उसको पता है कि कृष्ण मेरे साथ है तो मैं हार तो सकता ही नहीं, नहीं? उसको व्यथा हो रही थी, तो व्यथा उसको क्यों हो रही थी, उसके पीछे कुछ कारण है ना। तो पहला कारण हम सोच सकते हैं कि पहला जो कारण है वो, आज तो सतपाल प्रभु भी आए हैं, क्या हो गया ये, ये सारे गुमशुदा भक्त आज कैसे इकट्ठे हो गए। अच्छा, सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, सो एक कारण ये था कि अर्जुन इसलिए व्यथित हो रहा था क्योंकि करुणा की दृष्टि से, वो सोच रहा, अर्जुन सोच रहा था कि देखो अच्छे भले जीते जागते खड़े हैं, खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, अभी मर जाएंगे सारे, इधर के भी लोग मर जाएंगे, उधर के भी लोग मर जाएंगे। तो हालांकि हमारे जो शास्त्र हैं, अर्थशास्त्र हैं, उसमें कहा गया है कि जो आतताई है उसको मार देना चाहिए, है ना। जो आपको मारने के लिए आता है, आपको विष देने के लिए आ रहा है, आपकी संपत्ति हड़पने के लिए आ रहा है, हाँ, हथियार लेके आ रहा है आपको मारने के लिए, हाँ, आप कोई जहर देने की कोशिश करे, आपकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करे, उसको मारने में कुछ हर्ज नहीं है। ये अर्थशास्त्र का आदेश है, लेकिन अर्थशास्त्र से ऊपर धर्मशास्त्र है, हाँ, अर्थशास्त्र है उसके ऊपर धर्मशास्त्र है। तो धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र से श्रेष्ठ है, ठीक है। तो धर्मशास्त्र क्या बोलते हैं, हाँ, धर्मशास्त्र बोलते हैं कि किसी को भी, किसी के भी प्रति हिंसा नहीं करो, है ना। हिंसा करना अच्छी बात नहीं है, है ना। सो अर्जुन ने बोला कि ठीक है, अगर हम अर्थ शास्त्र के अनुसार देखें तो मुझे मार देना चाहिए, लेकिन धर्म शास्त्र कह रहे हैं कि अगर आप मारोगे तो आपको पाप लगेगा, है ना। पहले तो हर जो घर में बुजुर्ग भी हुआ करते थे, आजकल तो बुजुर्ग थोड़े कम होते जा रहे हैं, गांव भेज देते हैं, जाओ आप वहां पे जाके आराम से रहो, या जो बुजुर्ग हैं वो पार्क में जाके ताश खेलते रहते हैं, नहीं। सो पहले जो बुजुर्ग थे वो घर में हमेशा रहते थे, माता पिता दादा दादी, और वो कोई भी जैसे कोई मच्छर तंग कर रहा है तो मारने की कोशिश करता था कोई, तो बोलते थे उड़ा दो इसको, मारो मत, है ना। आजकल तो वाल आउट लेके आते हैं, मारो फटाफट इसको, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, जहां तक संभव हो नहीं मारना चाहिए। तो मच्छर मारने चाहिए नहीं मारने चाहिए, अगर चिकन गुनिया हो गया तो, हाँ, सो बेकार में नहीं मारना चाहिए, अगर आपको काट ले फिर सोचो उसके बारे में। लेकिन सांप आ जाए तो, सांप बिच्छू है उसको देखते ही मार देना चाहिए, क्योंकि बहुत ईर्ष्यालु होते हैं, बिना बात के डस लेते हैं, है ना। तो सांप बिच्छुओं को तुरंत मार देना वो अच्छा है, ये, हाँ हाँ, बिच्छू को मार दो। अब आप सब लोग जूते चप्पल लेके ढूंढने मत निकल पड़ना, कोई आ जाए सामने तो फिर बात अलग है, हाँ। लेकिन ऐसा नहीं कि चलो भैया कल्याण के लिए, सारे बिछुआ जैसे जन्मेजय ने किया था ना, जो जन्मेजय है, जन्मेजय कौन है? हाँ, परीक्षित का बेटा था, है ना? हाँ, छिपकली भाई, छिपकली को मारने के लिए दम चाहिए ना, छिपकली को देखता तो करके भाग जाओगे सारे। छिपकली को मारने के लिए बहुत ताकत चाहिए, नहीं? ज्यादातर लोग तो टिड्डे को देख के भी भाग जाते हैं, है ना? सो जन्मेजय जो है परीक्षित महाराज के पुत्र है वो, है ना? तो जब परीक्षित महाराज को तक्षक ने डस लिया था तो बहुत गुस्सा आ गया उसको, और उसने एक यज्ञ किया, उसने जन्मेजय ने, और यज्ञ में ऐसा यज्ञ में उसका प्रभाव था कि सारे सांप अपने आप खींच के चले आ रहे थे और यज्ञ की अग्नि में गिरते जा रहे थे। तो फिर ब्रह्मा जी आए, उन्होंने बोला, अरे भैया बस करो, सबको मार दोगे क्या? अच्छा नहीं है ऐसे मारना, ठीक है ना, दया दिखानी चाहिए, है ना? लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि अगर सांप बिच्छू दिखाई दे तुरंत मार दो उनको, ताकि भक्तों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचे, है ना? तो पता नहीं अर्थशास्त्र से है धर्मशास्त्र से पता नहीं, लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने बोला कि मार दो सामने से, ठीक है। सो अर्जुन ने सोचा कि ऐसा नहीं हो कि पाप लग जाए, है ना? करुणा के बारे में भी सोचा, तो पहला कारण क्या था? करुणा, क्या करुणा आ रही थी कि अरे भाई सब मर जाएंगे, अच्छा नहीं है, परिवार के लोग हैं सारे, नहीं? तो दूसरा कारण क्या कि पाप से डर रहे थे, हाँ? और तीसरा कारण क्या था? कि वो सोच रहे थे कि अगर सारे मर गए तो फिर एंजॉय किसके साथ करूंगा, अगर राज्य मिल भी गया तो उसको भोगेंगे किसके साथ? इतना बड़ा महल मिल गया, उसमें अकेला भूतों की तरह घूमेंगे, उसका क्या फायदा होगा, सुख कैसे मिलेगा? नहीं, सुख का अनुभव करने के लिए भी तो मित्र परिवार वाले चाहिए ना, बहुत सारा पैसा है, अकेले ही पड़े हुए तो क्या फायदा, नहीं? जैसे वो राजेश खन्ना था, उसके बाद पीछे में उसमें समाचार पत्र में पढ़ा मैंने कि उसके बीवी बच्चे तो उसको छोड़ के चले गए थे, डिंपल का पाड़िया तो अकेला ही पड़ा हुआ था वो, इतना बड़ा सुपरस्टार, कोई पूछने नहीं आता था उसको, बिल्कुल एकांत में अकेले में जीवन बिताया उसने, और गुमनामी में मर गया वो। मरने के बाद सारे लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन जब तक नहीं मरा था तब तक गुमनामी में था। ऐसे ही मुझे एक्ट्रेस का नाम याद नहीं आ रहा, चलो जो भी है दोनों में से कोई है, परवीन बॉबी थी या पता नहीं जीना तमान थी, वो भी 4 दिन तक फ्लैट में मरी पड़ी रही, परवीन बॉबी, चलो हम अथॉरिटी की बात मान लेते हैं। सो 4 दिन तक मरी पड़ी रही, किसी को पता ही नहीं चला, वो पता कैसे चला? दुर्गंध से, लोगों ने कहा बड़ी दुर्गंध आ रही है, चेक करो। फिर लोगों ने, सारे शेरलॉक होम्स बन गए, उन्होंने बोला बाहर से दूध नहीं उठाया, अखबार नहीं ली, तो कुछ गड़बड़ है, तो दरवाजा तोड़ के अंदर गए तो मरी पड़ी थी, है ना? सो अर्जुन ने बोला कि सारे मर जाएंगे अगर, तो चलो राज्य मिल भी गया तो मतलब भोगूंगा कैसे उसको, सुख का अनुभव कैसे होगा, है ना? तो ये सारी बातें सोच के जो है अर्जुन का जो है वो हृदय विषाद से भर गया, व्यथित हो गया वो, हाँ? वो कायरता के कारण जो है परेशान नहीं था, वो ऐसा नहीं था कि कायरता के कारण डर लग रहा था, अरे भाई हार ना जाए, क्षत्रिय हार से नहीं डरते, जो क्षत्रिय होते हैं उनको पता है, हाँ? मुझे वो पुराण का नाम ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें लिखा हुआ है कि जो सन्यासी है जिसने पूरा जीवन सन्यास धर्म का पालन किया, योग शक्ति योग का पालन किया, और जो क्षत्रिय है जिसने युद्ध क्षेत्र में पीठ नहीं दिखाई, मरने के बाद दोनों को एक ही गति मिलेगी। क्या गति मिलेगी? स्वर्ग लोक से भी अच्छी जगह पे, सूर्य लोक में उनका वास होगा, है ना। आप लोग बोलोगे कि सूर्य लोक में जाने का क्या फायदा, है ना, जून की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, लाखों मील दूर है सूर्य, उसी में जाके घुस जाएंगे तो भैया क्या हाल होगा हमारा। लेकिन जो सूर्य लोक में रहते हैं, भगवान उनको ऐसा शरीर प्रदान करते हैं कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य की गर्मी है, उनको चांदनी की तरह लगती है, बहुत मजा आता है उनको। ऐसा नहीं है कि झुलसते झुलसते बड़ी मुश्किल से रह रहे हैं, और इतने तेजस्वी होते हैं सारे, है ना। जैसे जैसे सूर्य देव का नाम क्या है? विवस्वान। अच्छा, विवस्वान के सारथी का नाम क्या है? और विवस्वान के सारथी का नाम नहीं पता? अच्छा, उसका अरुण, अरुण सही याद है? नहीं याद है, हम बोलते हैं ना अरुणोदय, सुबह हम बोलते हैं ना अरुणोदय, कि अभी सूर्य उगा नहीं है अभी, लेकिन रोशनी हो गई। रोशनी कैसे हो गई? क्योंकि अरुण आ गया, वो जो सूर्य देव का सारथी है वो आ गया। सूर्य देव के सारथी आने से अंधेरा दूर हो जाता है, अरुणोदय बोलते हैं ना, नहीं ठीक है ना। जो सूर्य लोक में सारे रहते हैं, जो निवासी होते हैं, बहुत उनका प्रदीप्त शरीर होता है उनका, बहुत ही, आप लोग उनको देख भी नहीं पाओगे, आंखें चुंधिया जाएंगी, इतना प्रकाशमय शरीर होता है, है ना। तो अगर आप सब लोग अगर वैकुंठ नहीं जाना चाहो और आप अच्छे से बहुत तपस्या करो, योग का पालन करो, तो आप लोग भी सूर्य लोक में प्रवेश हो जाओ, प्रवेश कर सकते हो, नहीं तो जाके इंडियन आर्मी में शामिल हो जाना, ठक गोली खाई सूर्य को, ठीक है। अर्जुन सोच रहा था कि ये जो मर जाएंगे ये तो भैया सही जगह पहुंच जाएंगे, हम पीछे इनको याद करके रोएंगे, वो कोई है ही नहीं किसके साथ में सुख भोगे। तो ये सब सोच के जो अर्जुन है वो परेशान हो रहा था, क्या बोल रहे हो? ये 29वां श्लोक है। वे पथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते गांडीवं संस्रितय हस्ता त्वच्चैव परिदह्यते। त्वक का मतलब होता है चमड़ी, परिदह्यते मतलब जल रही है, है ना। तो अर्जुन बोल रहा है मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है, सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। तो प्रभुपाद कहते हैं ये दो कंडीशन में होता है ऐसा, जब बहुत ज्यादा भावावेश में आ जाए, जो भक्त होते हैं ना, जो बहुत शुद्ध भक्त हो जाते हैं, जो जैसे आप लोग कभी ना कभी इस जन्म में हो सकता है हो ही जाओ, है ना। तो फिर आप लोगों को जब आप वैकुंठ धाम चले जाओगे तो आपको पूछेंगे भगवान कृष्ण किसके साथ थे तुम, तो आप बोलोगे हम पावन चटानंद लोग, तो बोले उसको भी लेके है ना। सो दो तरह के जो बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, बहुत भगवान से बहुत ज्यादा प्रेम विकसित हो जाता है, तो उनको भी बड़ा लगता है गला सूख गया, चमड़ी उनको लगता है बहुत जल रही है। तो चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया हाँ, अपने आचरण के द्वारा स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपने लीला में दिखाया। आप अगर चैतन्य चरिता में पढ़ेंगे अंत लीला, तो आप देखेंगे कि चैतन्य महाप्रभु इतने भावावेश में आ जाते थे कि जो उनके जैसे कोहनी का ये जोड़ है ना, अलग हो जाता था, ऐसे हाथ लटकना शुरू हो जाता था, सारे शरीर के जोड़ अलग अलग हो जाते थे। हाँ, उनको लपेट लो, ऐसे शरीर हो जाता था उनका। और इतना भगवान से विरह उनको महसूस होता था कि वो अपना जो अपना मुख है वो दीवारों से रगड़ते थे। इतना उनको भावावेश हो जाता था। जब हम जगन्नाथपुरी जाएंगे आपको वो दीवार दिखाएंगे जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु अपना जो है चेहरा दीवार से रगड़ते थे, सहन नहीं होता, भगवान का विरह सहन नहीं होता था। तो कई लोग बोलते थे देखो कितना प्रेम है इनमें, कितना प्रेम है कि सहन नहीं हो रहा। चैतन्य महाप्रभु कहते थे प्रेम है ही नहीं। तो बोलते थे कैसा कह रहे हैं कि प्रेम नहीं है, बोलते अगर प्रेम की एक बूंद भी होती तो ये शरीर धारण करना संभव नहीं था, क्योंकि अगर प्रेम होगा भगवान से तो इतना अधिक विरह हो जाएगा कि शरीर धारण नहीं कर सकते, तुरंत शरीर छोड़ देंगे। तो बोल रहे थे कि मैंने शरीर धारण कर रखा है, यही इस बात का सबूत है कि मुझ में लेश मात्र भी कृष्ण प्रेम नहीं है, है ना। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर आध्यात्मिक जो है भावावेश हो तो भी ऐसी सिचुएशन होती है, और अगर कोई भौतिक विपदा में अगर पड़ जाए, कोई भौतिक प्रॉब्लम हो जाए तो भी घबराहट हो जाती है। नहीं, अगर कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो सपोज फैमिली का कोई मेंबर है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, नहीं कुछ बीमारी हो गई, सो अगर कुछ एडमिट हो गया तो बहुत घबराहट नहीं होती, नहीं हमेशा यही। और अगर आईसीयू में सीधा पहुंचा दिया, आजकल तो बिना बात के आईसीयू में पहुंचा देते हैं, हाँ सीधा आईसीयू में पहुंचाते हैं और बोलते हैं कि आप देख नहीं सकते उनको, बस पैसे देते हो, है ना। सो बाहर बैठे लोग सोचते रहते हैं पता नहीं क्या हो रहा होगा, हाँ पता नहीं ठीक है नहीं ठीक है, नहीं घबराहट हो जाती है, है ना। कोई दादा दादी अगर जमा हो जाए तो नहीं होती, है ना, तो नहीं होती। कोई मतलब किसी की उपयोगिता बाकी है उसी के जमा होने पर ऐसा होता है, है ना। दादा दादी तो सेवा करवा रहे हैं, है? सो अगर उपयोगिता किसी की नहीं हो तो इतना टेंशन नहीं ली जाती है। टेंशन तभी होती है जैसे अगर घर का मुखिया कमाने वाला हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, हाँ क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा, घर की टेंशन है उसकी टेंशन नहीं है। कभी वो गया तो भैया कमाई कहां से होगी। और अगर वाइफ एडमिट हो जाए तो हस्बैंड सोचते हैं यार रोटी कौन खिलाएगा, कपड़े कौन धोएगा, कैसे घर चलेगा। तो जो जो टेंशन है वो उपयोगिता के ऊपर है, है ना। इसलिए तो बोलते हैं सारे जो जितने भी संबंध हैं सारे स्वार्थ से प्रेरित हैं, ऐसा मत समझना कि बहुत प्रेम चल रहा है आपस में, है ना, प्रेम प्रेम नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कभी भी कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जाके घर छोड़ के भाग जाओ, घर में रहो लेकिन भ्रमित मत रहो, ध्यान रखो कि सब स्वार्थ से चल रहा है, आप भी स्वार्थी हो और सामने वाला भी स्वार्थी है, है ना। तो कर्तव्य समझ के काम करो, है ना, और फिर जब टाइम आए 50-60 साल के हो जाओ, जब अगली पीढ़ी आपकी सेटल हो जाए, खड़ी हो गई, घर का देख रेख करनी शुरू हो गई, तो तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाओ, इसको क्या बोलते हैं? वानप्रस्थ, है ना, इसको वानप्रस्थ बोलते हैं कि चलो 50 साल तक आप घर में रहे, बहुत अच्छा किया, ठीक है, लेकिन अब अगली पीढ़ी तैयार हो गई है और अगर आप वानप्रस्थी बनोगे तो सास बहू की लड़ाई भी नहीं होगी, नहीं, कभी कभार जाओगे आप घर में तो अच्छे से देखभाल करेंगे, वहीं पड़े रहोगे यार, ना जाते हैं ना जाते हैं नहीं सही है, नहीं सही है। सो तो कब सोचेंगे वानप्रस्थ के बारे में, कब सोचना चाहिए? आज सोचना चाहिए, आज सोचोगे तो 50 में निकलोगे, 50 में सोचना शुरू करोगे तो काम खत्म, है ना। आज सोचना शुरू करो कि चलो अब 50 के होने, जब 50 के होंगे तो भैया घर में ज्यादा देर नहीं रहना, निकलना यहाँ से। अगर ऐसा सोचोगे तो घर में फिर आसक्ति थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, पता है यार निकलना ही है। अगर घर से हमेशा आसक्त रहेंगे तो फिर निकलने में दिक्कत होगी, है ना, और अगर घर में ही पड़े रहेंगे तो फिर घर वालों से आसक्ति बनी रहेगी। क्या कह रहे हैं ये अजय, क्या बोल रहे हो? प्लान तो नहीं बना रहे तुम जाने का? वहां पे आश्रम का पता तो नहीं पूछ रहे? वृंदावन में कौन से आश्रम है फ्री में रखते हैं? सो और अगर घर में आसक्ति बनी रहेगी तो मृत्यु के समय किसका ध्यान आएगा? जिनसे आसक्ति होगी उसी का ध्यान आएगा। अगर घर वालों का ध्यान आएगा तो ऐसा नहीं है मरने के बाद उसी घर में अपने बेटे के रूप में पैदा हो जाओगे ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है उसी घर में कीड़े मकोड़े के रूप में पैदा हो जाओ, है ना, फिर जो आपकी बहू है वो चप्पल लेके आए और टक से अगला शरीर के लिए आप तैयार हो जाओ, है ना। सो ऐसा मत सोचना कि अगर मैं घर से आसक्त रहूंगा या घर से आसक्त रहूंगी तो भैया चलो इसी घर में दोबारा पैदा हो जाएंगे, हाँ, और आराम से फिर इसी संपत्ति का भोग करते रहेंगे, ऐसा नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, हो सकता है हो भी जाए, लेकिन ज्यादा चांस कीड़े मकोड़े ठीक है, इसलिए हमें आसक्ति घटानी चाहिए, जितनी आसक्ति कम होगी उतनी टेंशन कम होगी। पड़ोसी से आसक्ति नहीं होती ना, पड़ोस में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो दुख होता है, हाय हाय क्या हुआ, चलो बोलते तो हैं लेकिन टेंशन तो नहीं होती, है ना। आप जाते हो पड़ोसी के पास, बोलते बहुत बुरा हुआ, फिर घर आके शाही पनीर बनाते नहीं बनाते हो? बनाते नहीं बनाते, है ना। सो जितनी आसक्ति कम होगी उतना आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको यहीं पर हम इसको विराम देते हैं। हमने 29 तक हमने किया, एक और कर दें, चलो एक और हम कर देते हैं, हाँ। सो 30वां श्लोक है, न च शक्नोमि अवस्था तुम ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। सर्जन कह रहे हैं कि मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने आप को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है, हे कृष्ण मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं, है ना। सो अर्जुन ये कह रहे हैं, अर्जुन अपने मन में सोच रहे हैं कि लड़ाई तो हम अच्छे के लिए कर रहे हैं कि अच्छा होना चाहिए, लेकिन मैं अगर इसके परिणाम के ऊपर सोचूं, दूरदर्शी बन जाऊं, अगर मैं सोचना शुरू करूं कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, फाइनली क्या परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, तो मुझे तो सब कुछ खराब ही दिख रहा है ना, सब कुछ खराब दिख रहा है। अब इस श्लोक के बाद अर्जुन बताएगा कि खराब कैसे दिख रहा है, हाँ विपरीत कैसे दिख रहा है। अब अगले जो श्लोक है उसके अंदर अर्जुन अब बहुत डिटेल में बताएगा कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वर्ण संकर आ जाएंगे, जो परिवार में जो रीति रिवाज चल रहे हैं खत्म हो जाएंगे, जैसे अब खत्म हो चुके हैं आजकल, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली नहीं है, संयुक्त परिवार नहीं है, तो किसी को पता ही नहीं क्या करना है ना। सो अभी पीछे करीब 1.5 महीना पहले 2 महीने पहले किसी की डेथ हो गई, तो मैं गया शमशान घाट में, तो वहां पे गया, तो जब वो अर्थी लेकर आए, जो वो लड़का डिवोटी था उसके फादर की डेथ हुई थी, नहीं उसके बेटे की डेथ हुई थी, बेटे की डेथ हुई उसके, जवान लड़के की बेचारे की डेथ हो गई, तो वो मेरे पास आया, बोल रहे हैं प्रभु जी कैसे करना चाहिए। मैंने कहा मैं क्या बताऊं भैया, तुम देखो कैसे करना है, तुम अपने बड़े बुजुर्ग से पूछो, कोई है ही नहीं है ना। तो छोटा सा बच्चा, वो बच्चा था करीब 12-13 साल का, तो वो जो शमशान में जो जो पंडित क्रियाक्रम कराते हैं, उसने बोला कि जो इतने छोटे बच्चे की कपाल क्रिया नहीं होगी, तो 2-4 लोगों ने बोला नहीं होनी चाहिए, तो मेरे पास आया है प्रभु जी क्या करें। मैंने कहा मुझे क्या पता, आप अपने कोई बुजुर्गों से पूछो, आपके कोई बुजुर्ग नहीं है? कह रहे नहीं है कोई बुजुर्ग। तो फिर हमने वहां पे जो उनके परिवार के और कुछ अधेड़ उम्र के लोग थे, हमने उनसे बैठ के सलाह की, हमने फिर वोटिंग कराई, कितने लोग हैं कपाल क्रिया करने वाले, कितने हैं उसके अगेंस्ट, तो ज्यादातर लोगों ने बोला कि कपाल क्रिया करवा दो, तो फिर हमने वो कपाल क्रिया करवाई। अगर लेकिन कोई बुजुर्ग होता एक सेकंड में बता देता क्या करना चाहिए, नहीं, क्योंकि उसको पता है, बुजुर्गों को पता होता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, नहीं, इसीलिए अब बुजुर्गों को बेकार नहीं समझना चाहिए, उनके पास तजुर्बा है, उनके पास नॉलेज है, बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना चाहिए। और सम्मान करने का एक कारण ये भी है कि जो आप अपने माता पिता के साथ करोगे वो आपकी संतान आपके साथ करेगी, वो बोल रहे ऐसे ही होता है, अगर आप जली हुई रोटी खिलाओगे तो आपको भी जली रोटी मिलेगी। वो बोलते हैं हो सकता है ऐसे ही करना अच्छा होता हो, इससे हो सकता है सेहतमंद रहे, नहीं। अगर आप जैसा बर्ताव करोगे, आप अपने बच्चों को सिखा नहीं रहे सामने से, लेकिन वो आपके आचरण को देख के अपने आप ही सीख रहे हैं वो, है ना। तो आप सब जो आपके घर में बुजुर्ग हैं उनको सम्मान करो, उनको अपने पास रखो, और उनका ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि वो बूढ़े हो गए आप नहीं हो गए, आप बूढ़े हो जाओगे, टाइम की बात है ना। फिर जब आपके बच्चे आगे पीढ़ी देखेगी कि हाँ भाई ऐसा करना चाहिए, तो फिर वो भी इसी प्रकार से सेवा करेंगे। इसी को तो संस्कार बोलते हैं, है ना, इसी को संस्कार बोलते हैं, ठीक है ना। आगे के जो श्लोक है उसमें बहुत तरह तरह के तर्क प्रस्तुत करेंगे अर्जुन, और आप देखोगे कि वो तर्क बहुत सही तर्क हैं, ऐसा नहीं है कि बेकार के तर्क लगा रहे हैं। जो अर्जुन जो भी तर्क आगे प्रस्तुत करेंगे कि क्यों विपरीत परिणाम दिख रहे हैं, वो सारे बहुत ही सटीक आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो हमने ये 30 श्लोक तक कर दिया। सो अगली बार मंडे को, कल नहीं, कल वाला मंडे छोड़ के नेक्स्ट जो मंडे आएगा उसमें हम 31वें श्लोक से